प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 20 जून 2017 के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं न्यूज वाले पोर्शन पर आऊं, आज का मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, थोड़ा सा आपको उबाऊ जरूर लग सकता है, अधूरा भी लग सकता है, इस मायने में कि आज के टॉपिक का संबंध उन स्टूडेंट्स से ज्यादा है जिन्होंने अभी प्री एग्जाम दिए हैं, उनसे संबंधित ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके लिए भी उपयोगी है जो देने जा रहे हैं या जो किसी कारणवश नहीं दे पाए, देने की सोच तो रहे थे लेकिन नहीं दे पाए। और मित्रों, आज का यह जो विषय है ये बहुत ही रेयर इस मायने में है क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर बातें नहीं होती हैं, ज्यादातर बातें नहीं की जाती हैं। तो आज न्यूज के पोर्शन के बाद हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आपने न्यूज सुनी ही होंगी, कोई खास बातें न्यूज में नहीं थी। मैं दो पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहला कि हमारे देश के जो अगले राष्ट्रपति होंगे, लगभग निश्चित सा ही हो गया है, वो होंगे रामनाथ कोविंद जी। इनके बारे में अखबारों में आज काफी आया भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि ये लॉ के बहुत अच्छे जानकार हैं, कानून के ज्ञाता हैं, इस मायने में कि एडवोकेट रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वकालत की है, ये इनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है। जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि वो राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, है ना, राज्यसभा के सदस्य रहे आप देखते हैं, फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनके वो मेंबर्स रहे, राज्यपाल रहे, तो ये दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उनमें दिखाई देता है। देखिए, हो सकता है कि वो कोई राजनीति में हो, आप देखते ही हैं कि राजनीति में बहुत से लोग हैं, लेकिन संविधान की जानकारी उतनी नहीं है। मतलब एक औपचारिक जानकारी की बात मैं कर रहा हूं, अन्यथा तो संविधान की जानकारी आपको और मुझको भी थोड़ी थोड़ी तो है ही, लेकिन एक औपचारिक जानकारी, एक सिद्धस्थ जानकारी वह उनके पास है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरा, ये वो राजनीति में रहे हैं तो संविधान का जो अप्लाइड फॉर्म होता है, जो व्यावहारिक पक्ष होता है, वो राजनीति है। कि संविधान तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन राजनीति कैसे चल रही है। हालांकि ठीक है कि जो राजनीति चल रही है वो संविधान के अनुकूल चल रही है, लेकिन उसकी समझ परख होना आसान बात नहीं है, वो तभी हो पाती जब आप उसके अंदर हो। तो दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रामनाथ कोविंद जी के साथ है। तो मित्रों, इनके बारे में मैं ज्यादा बातें अभी नहीं करूंगा क्योंकि जो हमारे सिविल सर्विस का जो पॉइंट बनेगा वो खासकर होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इम्पॉर्टेंट अभी जो टॉपिक हमारे लिए इमर्ज हो रहा है वो ये है, तो जब चुनाव का समय आएगा उस समय मैं आपको, अगर जरूरत महसूस हुई तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी चुनाव की, राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, वो उस तरह से आसान नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ एमपी और एमएलए के चुनाव हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट इनके लिए है दोस्तों, जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन की बात की कि जो राष्ट्रपति है आप जानते हैं कि संविधान का रक्षक होता है, और ऐसी स्थिति में उसको दोनों बातें जाननी जरूरी है कि वो राजनीति का भी जानकार हो और संविधान का भी जानकार हो। फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है वो गोरखालैंड को लेकर के है, जो लगातार कुछ दिनों से चलता आ रहा है। यहां मैं उसको लेकर कुछ विशेष बातें आपसे शेयर करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि देखिए, अब गोरखालैंड की मांग ना धीरे धीरे कैसे बंगला भाषा शुरू होने से लागू हुई और कहां अब वो स्टेट की मांग पर आ गई है। अब देखिए, अखबारों के सुर बदल गए हैं। सुर क्या मतलब, वो घटनाएं यही हो रही है तो अखबारों को लिखना ही है ना। अब स्टेट की मांग में वो कन्वर्ट हो गया, जिसका इंडिकेशन, एक संकेत मैंने शुरू में आपको दिया था कि देखिए अब ये क्या रूप लेता है, तब वो स्टेट की मांग पर हो गई। यानी कि अब ये कहना है कि भैया हमें तो अपना राज्य दे दो तो हम अपने ढंग से अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा कर लेंगे, क्योंकि आप अगर हमारे, आपके राज्य में हम रहे तो फिर पता लगा कि इसी तरह से आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हम पर थोपते रहोगे, अगर बड़ी क्रूड भाषा में अगर हम कहें तो, यही एक तरीके से कहना है। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अलग राज्य की मांग होती है तो इसको आप बहुत ही निगेटिव रूप में मत लीजिएगा। 1980 के आसपास इसको बहुत ही निगेटिव रूप में लिया जाता था, जब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे उस समय यह माना जाता था कि अगर कोई अलग राज्य की मांग कर रहा है तो देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है। बेसिकली एक प्रशासकीय व्यवस्था भी है। आप देख रहे हैं कि जो छोटे राज्य हैं वो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने प्रमाण है कि बड़े राज्यों को जब दो भागों में तीन भागों में बांटा गया और छोटे छोटे राज्य बनाए गए तो वो क्षेत्र जो बहुत पिछड़े हुए थे और अलग राज्यों की मांग कर रहे थे अलग होने के बाद काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको चीजों को देखना होगा और अभी भी बहुत से राज्यों में इस तरह के अलग होने की मांग हो रही है, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। उत्तर प्रदेश की देखिए आज भी जो आबादी है वो 22 करोड़ है, मतलब 1/5 ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन। अब इस 22 करोड़ की आबादी का एक राज्य है तो इसीलिए उसमें भी अलग से मांग हो रही है। आपने पूर्वांचल का नाम सुना होगा, कभी बुंदेलखंड की मांग होने लगती है, कभी हरित प्रदेश की मांग होने लगती है, जो वेस्ट जो यूपी है वो इस तरह की मांग करने लगता है, महाराष्ट्र में विदर्भ स्टेट की मांग होने लगती है, कर्नाटक में कभी कभी कूर्ग की मांग उठने लगती है, वेस्ट बंगाल में अभी गोरखालैंड की मांग हो ही रही है, असम में कभी बोडोलैंड की मांग होने लगती है। तो ये भी छोटे छोटे राज्यों की मांग है। तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि गोरखालैंड की मांग इकलौती नहीं है बल्कि देश के दूसरे भागों में भी, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, वहां भी इस तरह की मांगे उठती रही हैं। ये बात अलग है कि वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। मित्रों, एक खबर जो अखबार की है वो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, फ्रांस के चुनाव को लेकर। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि फ्रांस के जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तो उसमें इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति पद के लिए जीते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये अभी यंग है, मतलब नियर अबाउट 40 ईयर्स के हैं, मैंने चर्चा भी की थी। इन्होंने एक डेढ़ साल पहले पार्टी बनाई और राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए पहली, हालांकि इससे पहले भी वो वित्त मंत्री वगैरह रह चुके हैं लेकिन नई पार्टी इन्होंने बनाई। इनके खिलाफ जो लीडर खड़ी थी वो थी मिसेस पेन, मैरीन ली पेन, ये नाम थोड़े से अगर आप याद रखेंगे तो आपको मदद भी मिलेगी। इन दोनों में अंतर ये था, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है और इसी तरह से आपको चीजों को जानना भी है। इनमें जो मुख्य अंतर था कि जो पेन थी, जो मैरीन पेन थी, वो एक तरीके से दक्षिणपंथी विचारों की थी। उनका यह कहना था कि नहीं, हमारा देश, हमारी भाषा, हमारी जाति, हमारा क्षेत्र, हम शरणार्थियों को अपने यहां नहीं आने देंगे, हम अपने ही देखेंगे। मतलब अगर पेन को यह कह लीजिए कि अगर उनको यूरोपियन यूनियन से अलग होना पड़े तो भी हो जाएंगे, इस तरह की विचारधारा। लेकिन जो मैक्रो थे वो एक रिफॉर्मिस्ट थे, मतलब सुधारवादी थे या उदारवादी विचार के थे। नहीं, हम यूरोपियन यूनियन में ही रहेंगे, नहीं हम अपने यहां जो सुधार है उनको लेकर के चलेंगे, ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करेंगे, यूरोपियन यूनियन में बने रहेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, तो इस तरह के विचारों के थे। हुआ क्या कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति ट्रंप जीत करके आए और ब्रिटेन में जो ब्रेग्जिट हो गया, इसके बाद यूरोपियन यूनियन में एक थोड़ी सी खड़बड़ाहट थी और इस बात को लेकर के खदबदाहट थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरोपियन यूनियन टूट जाए, ये डर लगने लगा था। और अगर फ्रांस में वास्तव में मैरीन पेन जीत गई होती तो एकदम तस्वीर आपको अलग दिखाई देती है, राइट। तो ये तो पिछली पृष्ठभूमि है। अभी एक जो नई घटना घटी है वो ये है कि वहां जो नेशनल असेंबली के चुनाव हुए, यानी अपनी भाषा में हम कहें तो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो उनमें से 577 सीटों में से 350 सीटें इनको मिली हैं। आप संख्या याद मत रखिए लेकिन इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा समर्थन मिला है और यह समर्थन मैक्रो को मिला है, यानी कि फ्रांस में जो उदारवादी विचारधारा है अभी भी प्रबल है। तो मित्रों, अब हम इसे जोड़ देते हैं फ्रांस की क्रांति से, 1789 की, 1789 की फ्रांस की क्रांति, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है और जो आपको जानना ही चाहिए, और फ्रांस की क्रांति आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ अखबारों का जो स्वर है आप देखेंगे कि वो इस रूप में देखते हैं कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है और इसको पूरी दुनिया वेलकम कर रही है। तो मित्रों, इसके बारे में आपकी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। इससे रिलेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल कमेंट है वह भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आप वो देख लेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, चार पांच और भी क्लिपिंग्स हैं वो आप देख लेंगे, उनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं। और अब मैं आता हूं सीधे आज के मुख्य विषय पर और वह है प्री एग्जाम के बाद। दोस्तों, यहां दो तीन सिचुएशन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली सिचुएशन यह हो सकती है कि आपने एग्जाम का प्लान ही नहीं किया था कि मुझे 2017 में बैठना है, 18 को प्लान किया है, 19 को प्लान किया है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए उपयोगी इस मायने में यह टॉपिक होगा कि आपको आगे चलकर क्या करना है। जो दो क्रूशियल सिचुएशन हो सकती हैं, हुई ही होंगी, वो ये कि मैंने तैयारी की, मैं तैयारी कर भी रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही मैंने सोचा कि नहीं, मेरी तैयारी नहीं हुई है और मैंने एग्जाम में बैठने का फैसला टाल दिया, अब मैं 2018 में बैठूंगा, राइट। ये एक सिचुएशन हो सकती है, यानी कि तैयारी का पूरा प्लान था लेकिन मैं एग्जाम में नहीं बैठा। दूसरी जो सिचुएशन होगी फ्रेंड्स, वो ये है कि मैं तैयारी कर रहा था, बीच बीच में रहा लगा कि बैठूं कि नहीं बैठूं, बैठूं कि नहीं बैठूं, लेकिन मैं बैठ गया, राइट। चलिए मैं एक और तीसरी सिचुएशन ले लेता हूं और वो बहुत ही वेल नोन सिचुएशन है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैं जितना भी कर सकता था मैंने किया और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ गया। ये तीन सिचुएशन उनकी है जो तैयारी कर रहे थे, फिर बैठे नहीं बैठे उनकी, राइट। दोस्तों, यहां मैं दो इस बातें स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने इसे नाम भी दिया है प्री एग्जाम के बाद। प्री एग्जाम हो गए हैं, आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं वो ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। पहली बात तो उनके लिए है जो नहीं बैठे, किसी भी वजह से नहीं बैठे, उनको अब चाहिए कि वो बाकायदे एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें कि वो एग्जाम में क्यों नहीं बैठे। वो सोच रहे थे कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगी, लेकिन वो बैठ क्यों नहीं पाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं या मैं खुद जिम्मेदार हूं? और अगर मैं खुद जिम्मेदार हूं तो फिर यह है कि मैं कौन कौन सी मेरी चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं किन किन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊं। बाकायदे उनकी आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए और उसके दोनों पक्ष होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी और भौतिक पक्ष भी। मनोवैज्ञानिक पक्ष इस मायने में कि मैं चीजों को टालता रहा, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, या आधा किया फिर छोड़ दिया, टाइम टेबल पूरा नहीं करता रहा, ये एक उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष, अरे अभी तो बहुत दिन बाकी हैं फिर शुरू करेंगे, अरे ये तो फालतू चीज है, अरे आज नहीं कल सुन लेंगे, परसों नहीं नर्सों पढ़ लेंगे, इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं वो आपको लिखनी चाहिए और लिख करके उसका डॉक्यूमेंट, मतलब ये कि रिकॉर्ड रखना चाहिए। भौतिक पक्ष का मतलब है कि मैं ठीक है, मैं कोचिंग में नहीं जा सका, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुझे उससे किताब लानी थी, मैं वो किताब नहीं मंगवा सका, देखो मेरे पास अखबार नहीं आ रहे थे तो मैं अखबार, ये जो भौतिक पक्ष है, जो बाहरी पक्ष है, आपको बकायदे लिखना चाहिए। मित्रों, अभी आपको सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन याद रखिए कि कुछ दिनों के बाद याद नहीं रहेगा, वो आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो लगातार आपको याद दिलाता रहेगा, वो आपके लिए आईने का काम करेगा, लाइक ए मिरर, उसमें आप अपना चेहरा देख सकेंगे। हालांकि मैं जो बात कह रहा हूं ये आपको बड़ी छोटी सी बात लग रही होगी, अभी तो ये छोटी सी है, लेकिन आप साल भर बाद महसूस करेंगे कि ये सच में कितनी बड़ी बात है। आपको कितना लगेगा, कितना वक्त लगेगा, हार्डली एक घंटा, क्या आप साल भर में एक घंटा इसके लिए नहीं निकाल सकते? आपकी लिखने की हैबिट भी होगी, सोचने की आदत भी पड़ेगी, आप एकदम एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में, जिसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बारे में आप लिखेंगे, वो अभ्यास होगा। जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जो एग्जाम में बैठे। मित्रों, आप लोगों को चाहिए कि आप भी सब अपने एग्जाम हॉल के अनुभव को बहुत विस्तार से लिखें। मैं आपके लिए स्पेशल वर्ड यूज कर रहा हूं विस्तार से, कि आप इस पर एक निबंध लिख रहे हैं और एक बहुत बड़ा निबंध लिख रहे हैं और उसका शीर्षक है प्री एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, ये निबंध है और इस निबंध की आप प्रैक्टिस कीजिए और शुरू से लीजिए कि साल भर तक आपने किस किस तरह की तैयारी की, कि आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे, अगर संतुष्ट नहीं थे तो उसका भी रीजन लिखिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके छूट गए थे। इसके बाद आप परीक्षा के कुछ दिनों पहले की अपनी मानसिक स्थिति के बारे में लिखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे थे, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना था, सब्जेक्ट के बारे में आपकी क्लैरिटी कितनी थी, इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन के, एग्जामिनेशन के दिन के अनुभव के बारे में लिखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके दिल की धड़कनें कितनी थी, 72 ही थी या 102 हो चुकी थी। इसके बाद अब जब आप हॉल में बैठते हैं तो अब परीक्षा के लिए बैठ गए हैं तो आप आपको पेपर मिल गया है, पेपर मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा है, फिर आपको आप प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं उस समय आपका अनुभव कैसा होता है, फिर बीच बीच में जब कठिन सवाल प्रश्न आते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, उसको फिर आप कैसे संभालते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं अगर आपको अच्छा प्रश्न मिलता है तो फिर कैसे आप उत्साह में आ जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपका जो अंतर्द्वंद है, जो एक मंथन है, उस मंथन के बारे में लिखें और खूबसूरत तरीके से लिखें और सोच सोच कर लिखें और पॉइंट दे देकर लिखें। ऐसे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सीधे लिखते ही चले जाएं एक अलग तरह के फॉर्मेट में, नो, आप पॉइंट पॉइंट देकर के लिखिए। इसके बाद आप फर्स्ट पेपर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दो घंटे का गैप मिलता है, दो तीन घंटे का, फिर वो दो तीन घंटे के गैप को आप किस तरीके से बिताते हैं, उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है, और फिर आप पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर के सेकेंड पेपर के लिए मुस्तैदी के साथ परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं। फिर सेकेंड पेपर के बारे में आप उसी तरह से अपने अनुभव लिखिए जिस तरीके से आपने फर्स्ट पेपर के बारे में लिखा, इसे भी विस्तार से लिखिए। और लिखने के बाद फिर आप अंतिम स्थिति में इस पर आएंगे कि अब आप हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है उनको लिखिए, अपना रिव्यू कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से प्रश्न आपसे छूट गए, क्यों छूट गए, कौन से प्रश्न आप जानते थे उनके उत्तर लेकिन उन्हें आप गलत करके आए तो वो गलत क्यों करके आए। ये आपके लिए जो सेकेंड अब जो मैं बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने अनुमान लगाया और वो सही हो गए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सही हो गए, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो गलत हो गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अगर सही हुए तो क्यों हुए और गलत हुए तो क्यों हुए। और फिर आप कुछ इस तरह का भी सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये प्रश्न सही हुआ है तो उसमें किसकी भूमिका रही है, किस नॉलेज की भूमिका, किताब की भूमिका रही, कहीं सुन लिया था उसकी भूमिका रही, कहीं पढ़ लिया था उसकी भूमिका रही, डिस्कशन की भूमिका रही, या ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, केवल एक इंटरनल मेच्योरिटी पैदा हो गई या जिसको मैं कहूंगा दृष्टि, कि आपके अंदर वो दृष्टि पैदा हो गई है कि आप सही का अनुमान ज्यादा सही तरीके से लगा लेते हैं, दूसरे लोग सही का अनुमान गलत तरीके से लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मित्रों, जब आप ऐसा लिख लेंगे तो मान करके चले कि आपने भी अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिरर तैयार कर लिया, आईना तैयार कर लिया है। ये आपके आगे के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त रूप से काम करेगा, आपकी बहुत मदद करेगा। मित्रों, ये आपकी उंगली पकड़कर आगे आगे चलेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। मेरी इस बात पर आपको अभी यकीन इसलिए ज्यादा नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये आपका पहला अनुभव होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार लिख लीजिए, छह महीने के बाद आप देखेंगे कि इसे आप खोलकर बार बार पढ़ना चाहेंगे, आपको अपने इस लिखे हुए से मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, और ये प्रेम ऐसा होगा जो आपको आगे ले जाएगा, पीछे नहीं धकेलेगा, आपको आगे ले जाएगा, आपकी आंखें खुली रखेगा, एक टॉर्च की रोशनी की तरह आपको रास्ता दिखाएगा। जब आपको अंधेरे में निराशा महसूस करेंगे तब आपको आप में एक हिम्मत भरेगा, ये ऐसा करेगा, मैंने ऐसा किया है। मैं ये बात आपको हाइपोथेटिक तरीके से नहीं कह रहा हूं, काल्पनिक रूप में नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस रूप में कह रहा हूं कि मैंने ऐसा किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ। अब मैं नहीं जानता कि आपको भी ऐसा महसूस होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि मैं भी उसी तरह का ह्यूमन बीइंग हूं जिस तरीके के आप हैं, या आपकी तरह का ही ह्यूमन बीइंग मैं हूं, तो जो मैं महसूस कर सकता हूं डेफिनेटली उसे ज्यादातर लोग महसूस करेंगे ही, फर्क केवल डिग्री का हो सकता है कि किसी ने ज्यादा महसूस किया, किसी ने कम महसूस किया, लेकिन मित्रों प्रिपरेशन में आपके बहुत ज्यादा आपको मदद इससे मिलेगी यदि आप ऐसा कर लेंगे। तो मित्रों, प्री एग्जाम के बाद के बारे में मुझे आपसे कुछ इतनी ही बातें करनी थी, और बीच बीच में जो छोटी मोटी बातें होंगी वो हम लोग करते रहेंगे। अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर, जो स्वागत करने का चरण है। मैं अपने पांच नौजवान उन साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं नितिन रोहिदास जाधव पुणे महाराष्ट्र से, चौधरी जयदीप कुमार लक्ष्मीपुरा गुजरात से, मनीष देववंशी कल्लन उत्तर प्रदेश से, सुशील मुंबई से, और लोकेश कुमार झारिया अमरकंटक मध्य प्रदेश से। तो तो मित्रों आप सभी पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी। नमस्कार।